मैं हूं डॉक्टर प्रिया। मैं आज आप पर आपके साथ चर्चा करूंगी भारतीय अर्थव्यवस्था का। किसी भी अर्थव्यवस्था को हम उनकी विशेषताओं से जानते हैं, तो जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम उस साल की बात करते हैं 1947, 15 अगस्त, जब हमें स्वतंत्रता मिली और हमारे अंग्रेजों के कई वर्षों के शासन से हमें मुक्ति मिली। पर उस वक्त जब हमें मुक्ति मिली तो ऐसा नहीं था कि हमें खाली जो स्वतंत्रता मिली उसका हर्ष था, हमें कई समस्याओं से उस वक्त जूझना पड़ा। तो उन समस्याओं पर की चर्चा हम करेंगे, उन पर रोशनी डालेंगे पहले, फिर हम बात करेंगे कि हमने उसके बाद कैसे 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 विकास की सीढ़ियाँ अपनी नापी। तो पहले हम अपना डिस्कशन इस बात पर करते हैं कि उस वक्त हमारे पास क्या क्या समस्या थी जिनसे हमें जूझना पड़ा। और वो समस्या ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी 100% हम हल हो गई हैं, पर उन समस्याओं से हम आज भी जूझ रहे हैं। चलिए पहली समस्या हम की बात करते हैं, वो है हमारी जो प्रति व्यक्ति आय थी उस वक्त बहुत ही कम थी, भारत के बहुत ही कम थी, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा थी और राष्ट्रीय आय के हिसाब से जनसंख्या ज़्यादा थी और जनसंख्या का जो बढ़ती दर थी और जो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की जो आय थी बढ़ने की दर थी उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, वो बहुत ही विपरीत थी। तो हम अगर देखते हैं 2012-13 में हमारे प्रति व्यक्ति आय हमारे रुपये 39,168 थी, और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें लगभग हमारे पास हर महीने 3,264 रुपये एक प्रति व्यक्ति कमाता था। ये बहुत, अगर हम इसकी तुलना करें और विषयों से, तो विश्व के और देशों से, तो ये बहुत ही कम है। और जैसे कि हम देखें अमेरिका की जो प्रति व्यक्ति आ रहे हैं वो भारत से 15 गुना अधिक थी, चीन की उस वक्त, चाइना की उस वक्त 3 गुना अधिक थी। तो इस तरह ये एक बड़ी भारी समस्या थी हमारे सामने जब हमें स्वतंत्रता मिली। जनसंख्या जैसे मैंने कहा बहुत ही बढ़ती दर पर था, और इसका एक कारण ये था कि मृत्यु दर जो थी वो घटने लगी, पर जो जन्म की बढ़ती दर थी वो उतनी तेज़ी से नीचे नहीं गिरी। अगर हम देखें 1921 के पश्चात भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, इसका यही मुख्य कारण था कि हमारे उस वक्त हमारी सरकार का रुख यही था कि स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना और फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन घरेलू देश में अपनी सीमाओं में, कृषि को, एग्रीकल्चर को बहुत उन्होंने महत्व दिया अपनी प्लानिंग में, फर्स्ट 3 प्लान्स में भी बहुत ज़्यादा उस पर एम्फोसाइज किया, उस पर स्ट्रेस किया, तो ये एक कारण बन गया। इसके बाद अगर हम देखें तो तीसरी समस्या थी कृषि पर निर्भरता। हमारे जब हमें आज़ादी मिली उस वक्त 70% लोग कृषि और उसके संबंधित कार्यों में निर्भर थे। ये इसलिए था क्योंकि वो ज़्यादा शिक्षित नहीं थे या प्रशिक्षित नहीं थे, ट्रेंड नहीं थे, और एक कारण ये भी था कि प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता भी बहुत कम थी उस वक्त। इसे जबकि 70% हमारे लोग, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कृषि और उसके उद्योगों के संबंधित उद्योगों में निर्भर थी, तब भी हमारी जो जीडीपी थी वो घरेलू जो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट थी वो तब भी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी। और एक और समस्या थी कि हमारी जो गरीबी में बहुत असमानताएँ थी, इनइक्वालिटीज़ थी, जो हमारी जो ऊपरी दर है 5% परिवारों के नियंत्रण में कुल संपत्ति का लगभग 38% था, जबकि नीचे की 60% परिवारों के नियंत्रण में दे हैड संपत्ति वेल्थ ओनली केवल 13% थी। इस इनइक्वालिटी भी एक समस्या थी जिससे हमारी सरकार को जूझना पड़ा, क्योंकि इससे हमारी जो सेविंग रेट पर बड़ा असर पड़ा, और सेविंग रेट आपको जैसे मालूम है निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। अगर अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं तो हम बात करेंगे आपकी उन विशेषताओं से जिस पर हमारे सरकार ने पूंजी निर्माण अथवा निवेश की उच्च दर। हम देखते हैं कि हमारी जो जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमारे लिए पूंजी का एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं था। हमें अपनी उद्योगों को अगर बढ़ाना था तो हमें पूंजी का इंतज़ाम करना था। पूंजी के इंतज़ाम के लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट दर होता है, वो भी तो देखना पड़ता है, क्योंकि हमें वो भी एक हमारे पर भार बन जाता है हमारे उद्योगों पर। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना था कि हमारे जो हाउस होल्ड्स थे उनकी जो बचत दर थी वो बढ़ाई जाए. तो उन बचत दरों के लिए हमें ये देखना था कि हमें लघु उद्योगों पर ध्यान देना पड़ा, हमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पर ध्यान देना पड़ा. तो फर्स्ट थ्री प्लान्स पर हमने यही ध्यान दिया कि हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ठीक करें. तो उनकी उनसे हमारी एम्प्लॉयमेंट जेनरेट हुई, लोगों ने कृषि को छोड़कर एग्रीकल्चर को छोड़कर थोड़े उद्योगों में आए, तो इससे हमारी जो थी जीडीपी भी थोड़ी बढ़ी. देखिए मैम, उस वक्त ना तो हम प्लानिंग करते थे, और जिस वक्त स्वतंत्रता हुई हमारी, हमें स्वतंत्रता मिली, उस वक्त जो ब्रिटिश राज का रुख था वो ये था कि इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को से जो माल था, कच्चा माल और पक्का माल, वो लेकर अपनी अपने देश ले जाते थे. वो उन्होंने एक रॉ मटेरियल सेंटर माना हुआ था हमारे कंट्री को, हमारी इंडस्ट्रीज़ को वही प्रमोट करते थे, वाली इंडस्ट्रीज़ को वो विकसित करते थे जिससे उनको उनकी इंडस्ट्रीज़ को, होम इंडस्ट्रीज़ को लाभ हो. तो इसलिए हमारा जो उस वक्त की समस्या थी वो ये था कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट था, हमारी जो हम जो इन्वेस्ट करते थे, जो हमारी सेविंग रेट थी, वो सब बहुत लो थी, और इसके मारे गरीबी का दर बहुत था. वो कहा जाता है, आज भी वैसे कहा जाता है कि विश्व के सबसे ज्यादा गरीब लोग हिंदुस्तान में. तो ये एक बड़ी भारी समस्या है, गरीबी से जूझना सरकार के लिए अपने में एक बड़ी भारी समस्या है. सबसे पहले तो मैं कहूंगी, हमने जैसे हम स्वतंत्र हुए तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, उन्होंने प्लानिंग शुरू की
जी.
1950-51 में हमारा पहला प्लान, फाइव ईयर प्लान लॉन्च हुआ. अगर हम देखें तो उन पहले जब हमने पहले पहला दूसरा तीसरा चरण इन फाइव ईयर प्लान्स का किया, तो हमारी कंट्री में, हमारे देश में विकास हुआ. और सबसे पहले जो ध्यान था हमारी सरकार का वो था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का. तो उन अंडरटेकिंग्स में ना ही खाली इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ, उनके जो प्रोडक्टिविटी थी, उनकी एफिशिएंसी थी, उनके उद्योग थे वो विकसित भी हुए. उनसे हमें, हमारे जो यूथ थे, हमारे जो अनएम्प्लॉयड थे, उनको रोज़गार भी मिला, और एग्रीकल्चर, कृषि से भार भी कम हुआ. तो हम कह सकते हैं हमारा देश उस वक्त विकसित होने लगा. पर जब तीसरा चरण था, तब हमें ये ज्ञात हुआ कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो थोड़ा कंपटीशन ना होने के कारण थोड़ा सा उसमें स्लगिशपना आ गया, थोड़ा सा उनका विकास की दर कम हुई. तो तब सरकार ने अपना ध्यान प्राइवेट सेक्टर में बढ़ा दिया. उन्होंने ये विकास, ये मॉडल अडॉप्ट करवाया सरकार से, जिसको कहते हैं हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिससे कि हमारा जो हमने कहा कि हम लाइसेंसिंग पॉलिसी को हमने रद्द किया, सरकार ने रद्द किया. ये कहा कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से उनके साथ साथ हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स यूनिट्स हैं उनको भी लगाया जाए, उनको उनके भी उद्योग खुले. और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा विश्व के उद्योगों को भी हम परमिशन देते हैं कि हमारे भारत में आकर अपने उद्योग खोले, जिससे कि हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़े, हमारी कंट्री में हमारा टेक्निकल जो ट्रांसफ़र था, जो हमारे जो यूथ को जो टेक्निकल अपग्रेडेशन हो रहा था बाहर विश्व में और देशों में, वो हमारे कंट्री में आया, जिससे कि हमारे बच्चों का, हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे उनके स्किल बढ़े, और उनको कई तरह के जॉब्स भी, इन विश्व की जो और कंपनियां थी यहाँ हिंदुस्तान में, उन्होंने उद्योग जब लगाए तो उनसे एम्प्लॉयमेंट भी उनसे मिली. तो इन सब बातों से एक निचोड़ मिलता है कि हमारी उससे जीडीपी बढ़ी, हमारा निवेश तो बढ़ा, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा, हमारा कंजम्पशन तो बढ़ा, पर हमारे उसके साथ साथ जो पर इंडिविजुअल कैपिटल इनकम थी, है ना, हर व्यक्ति की इनकम पर भी असर पड़ा, जिससे कि हम उनका कंजम्पशन रेट तो बढ़ा ही बढ़ा, पर उनका जो बचत दर था वो भी बढ़ा. और वो बचत दर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है अगर हमें अपने देश में विकास करना है, क्योंकि हमें विकास के लिए हमें पूंजी चाहिए. अब पूंजी कहाँ से आएगी? अगर हम विश्व के और देशों से ही मांगते रहेंगे तो हमें बहुत बहुत ऊँचा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा. वो हम देना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें तो हमारे देश का नुकसान है. तो हमें ये देखना है कि हमारे घर घर में ही हमारे जो लोग हैं वो हमारे हमारे बचत दर को बढ़ाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, बचत करें, कंजम्पशन अपना जितना चाहिए उतना करें और हमारे देश के विकास में अपना योगदान दें। अभी तो हमारा विकास, हम कह सकते हैं कि हमारा हमारे देश का नंबर उन देशों में गिना जाता है अब जहाँ पर जहाँ की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है या स्ट्रांग होने वाली है आने वाले देशों में, पर उसको ये पोजीशन बनाए रखने के लिए और इससे आगे बढ़ने के लिए बहुत दो तीन चीज़ें हैं जो हमारी सरकार को रोशनी देनी चाहिए, उसके ठोस कदम उठाने चाहिए। वो एक तो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगा तो आपको आपके कार्य बढ़ेंगे, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और उनको ये भी चाहिए कि जैसे वो अभी लघु उद्योग में लघु उद्योग के लिए उन्होंने स्कीम शुरू की है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसी स्कीमों को लाएं जिससे कि हमारे बच्चों को जो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से अपनी डिग्री लेकर निकल रहे हैं उनको दूसरे जगह दर दर जॉब के लिए ढूंढना ना पड़े और उनको जॉब मिले, जॉब उनके लिए रहे। ये नहीं कि वो डिग्री लेकर 3 साल 4 साल यही ढूंढते रहें कि कहाँ जॉब ऐसा मिले जैसे जो उनकी उनकी शिक्षा के अकॉर्डिंग हो, ये ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर और हमारे जो लघु उद्योग है इन तीनों पर हमारी सरकार ज़रूर ध्यान दे तो हमारा देश विकसित हो सकता है। और आगे देखिए, एक तो है जैसे हम देखें जब हम बात करते हैं अपनी जनसंख्या की वृद्धि में, तो हम ये कह रहे हैं कि अभी भी जो मृत्यु दर है, जन्म दर है, उनमें बहुत ज़्यादा गैप है। तो इस ये तो अच्छी बात है, एक विकसित देश का ये चिन्ह है कि मृत्यु दर घट रही है, पर हमें जो जनसंख्या पॉपुलेशन जो बढ़ती दर से अभी भी उसकी दर काफ़ी और देशों से ज़्यादा है, तेज़ी से कंपेयर करें तो काफ़ी तेज़ है, उसको उसके लिए हम अपने अपनी अपनी पॉपुलेशन को एजुकेट करें, हम अपने बच्चों को एजुकेट करें और हम उनको बताएं एक छोटा परिवार एक सुखी परिवार होता है और उस सुखी परिवार का मतलब होता है। और ये जो और ये एक मैसेज मैं ये भी देना मांगती हूँ कि हमारे गांव में जो बच्चे हैं हम चाहते हैं कि माँ बाप उनको ज़रूर प्राइमरी स्कूल तो ज़रूर भेजें। कई होते हैं कि प्राइमरी स्कूल में दाखिला करा देते हैं पर भेजते नहीं, वो घर के कामों में लड़कियों को लगा लेते हैं या लड़कों को खेतों में लगा देते हैं। भाई ये सब काम तो ठीक है पर उनको उनके जो स्किल्स हैं, उनको एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है उसको तो दिलवाएं कम से कम प्राइमरी स्कूल में। अगर हम शिक्षित हैं तो हम प्रशिक्षित भी हैं, हम ट्रेन भी हो सकते हैं आगे जाकर, और जब हमारे हम जब ट्रेन हो जाते हैं तो हमारे स्किल्स बढ़ जाते हैं और जब स्किल हमारे स्किल्स बढ़ जाते हैं तो हमें एग्रीकल्चर से कृषि के अलावा हम और उद्योगों में अपना कार्य कर सकते हैं। अगर हम अपने लर्नर्स की बात करें तो लर्न जब हम लर्नर्स की बात करते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि कौन कौन से उद्योग हैं जिनमें जॉब्स मिल सकते हैं, कहाँ पर वृद्धि हो रही है, किन जॉब्स में सरकार योजनाएं बना रही हैं, उन योजनाओं के अंतर्गत उनको कहाँ जॉब मिल सकता है, वैसे वो जॉब्स के लिए उनको अपना एजुकेशन और स्किल्स डेवलप करना चाहिए जिससे कि जब वो डिग्री लेकर कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से जब शिक्षित होकर निकले तो उनको जॉब मिल जाए मार्केट में जिससे कि उनका परिवार पल सके। जो ये गरीबी की जो वृद्धि है, गरीबी जो हम कहते हैं ना भारत में विश्व के देशों में वहाँ गणना की जाती है जहाँ गरीब सबसे ज़्यादा हैं, तो ऐसा आने वाले सालों में ना हो। देखिए प्राइम मिनिस्टर के जो हमारी जो अभी की सरकार है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर योजनाएं बहुत सारी अनाउंस की हुई हैं जिसमें बच्चों को स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये दो तो बहुत ही पॉपुलर स्कीम्स हैं और उन्होंने और भी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं जिससे कि आपको शिक्षा के लिए भी आपको पैसे स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं कि आप शिक्षित हो पाएँ और अपने स्किल्स डेवलप कर पाएँ जिससे कि आप एक कुशल सिटीजन ऑफ इंडिया कहला सकें आप, जिससे कि आप हिंदुस्तान के विकास में अपना योगदान दे सकें। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सरकार हर साल अपने 15 अगस्त में 26 जनवरी को अनाउंस करती हैं और अपने बुलेटिन में उनको लगाती हैं जिससे हर बच्चा अपने 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 को स्किल कर सकता है, अपने अपने एजुकेशन को माँ बाप अगर कि इनकम कम है, तो तब भी वो अपने शिक्षा पर, शिक्षा को पूरा कर कर एक कुशल भारतीय नागरिक बन सकता है। उस वक्त हमारा जो मेन फोकस था, सरकार का मेन फोकस था, वो था एग्रीकल्चर पर। शुरू शुरू में हमारी जो जनसंख्या थे उस पर था। अगर अब देखें हम, तो हमारी सरकार का रुख एजुकेशन पर है, हमारी सरकार का रुख आपके इन्वेस्टमेंट पर है, निवेश पर है, आपकी सरकार का रुख इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। तो काफ़ी चीज़ सुधरी है इसके हमारे। आज हमारी सरकार बड़े बड़े कार्यक्रमों पर, दूसरी चीज़ों पर, जिससे हमारा देश यहाँ से आगे विकसित हो पाए, उन पर ध्यान दे रही है। देखिए, हमारे देश में शिक्षा एजुकेशन पर बहुत पैसा सरकार खर्च कर रही है, पर जैसे आपने भी कहा, हमारे प्रधानमंत्री जिनकी सरकार फिर आ गई है, उनका सारा एम्फेसिस वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित ही ना हो, उनका स्किल डेवलपमेंट हो। तो स्किल्स डेवलप करना हमारी अगली पीढ़ी का, जो पीढ़ी अभी पढ़ रही है, उसका ये, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और उनके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे रिसोर्सेज की, कंट्री के जो आपके रिसोर्सेज हैं, उन पर उनको कैसे, किस पर लगाना है, किस पर, किस चीज़ पर योजना पर लगाना है, किस चीज़ पर नहीं लगाना है, क्योंकि उनकी वो तो जितनी जितना है उतना ही है। और उसको हम लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज को जैसे बात करें, हम ज़मीन की बात करें, धरती की बात करें, तो वो तो लिमिटेड है। हाँ, ऐसी पूंजी जो है हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, जो देश में है। हम यही चाहते हैं कि हम विश्व के और देशों से लें, तो हम अपने घर की, अपने भारत के निवासियों की ही बचत दर से अपना निवेश करना मांगते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करना मांगते हैं, तो इसके लिए पूंजी जुटाना भी एक अपने में एक समस्या है। देखिए, अगर हम खाली अपने उद्योगों से जो उत्पादन होता है उसका कंजम्पशन करते रहें, तो जो हमें हमारे प्रोडक्शन से जो थोड़ा परसेंटेज निवेश में जाना है, वो नहीं जाएगा। इससे ये क्या होगा कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में बड़ा भारी गैप हो जाएगा। इससे ये क्या होगा कि हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या नेशनल इनकम है, वो नीचे गिरेगा। और जब वो नीचे गिरेगा, तो देश कभी विकसित नहीं होगा।